ओम शांति। गीत बड़ा प्यारा था, ऐ वतनवासी। तो बाबा की सबको याद आती है ना, उसकी याद ही हमारा जीवन है, हमारी शक्ति है, हमारी प्रेरणा है, हमारा मार्गदर्शन करने वाली है। इसीलिए मन के तार जितने बाबा से जुड़े हुए हों उतना ही जीवन सहज सरल हो जाता है। और भट्टी में हमारा उद्देश्य भी यही, कैसे हम अपने पुरुषार्थ को सहज सरल कर लें। नई नई युक्तियां आप सबको मिल रही है ना भट्टी में, आनंद आ रहा है भट्टी में, गहराई में उतर रहे हैं सभी। हम सबके जीवन का एक ही उद्देश्य जब से हम बाबा के पास आए कि हम सबको बाबा के समान बनना है, यही उद्देश्य है। बाबा ने एक सैंपल हमारे सामने रखा है कि इनको देखो और केवल फॉलो करते चलो, और इधर उधर पैर रखने की, संकल्प रखने की जरूरत नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वैसे करते चलो। तो हमारे सामने एक एग्जाम्पल, जिन्होंने एक साधारण जीवन से उठकर एक अलौकिक संपूर्ण फरिश्ता अवस्था को प्राप्त किया, जैसा हम सबको भी करना है। तो बाबा की जो यात्रा रही है साकार से लेकर अव्यक्त तक की, आज हम उस यात्रा को थोड़ा देखेंगे, क्योंकि ये यात्रा हम सबको वैसा ही श्रेष्ठ बनाने वाली है, बाबा के समान। जैसे हम सबका जीवन रहा वैसे ही बाबा भी अपने जीवन में थे, एक ऐसा जीवन जो लोगों के लिए तो बहुत प्रेरक था। हम सब भी उस जीवन को जानते हैं। एक बार बाबा के उस साकार जीवन को अपने सम्मुख लाएं। एक नन्हा सा गांव का बालक जिन्हें फॉलो करना है, उनका जीवन चरित्र तो हमारे सामने होना चाहिए ना। गांव में रहते हुए भी सेवा भावी, सबकी मदद करने वाले। जब व्यापार करना शुरू किया तो भी बहुत ऑनेस्ट, तेरा तेरा करते हुए, गिनती ही भूल जाते थे और ज्यादा ही लोगों को दिया करते थे, गरीबों की मदद किया करते थे। भक्ति भावना इतनी, ईश्वर की चाहना इतनी, प्राप्ति की ललक इतनी कि अनेक गुरु कर लिए, तीर्थ यात्राएं करते रहे, इतनी रॉयल्टी कि राजाओं के मुख से भी बाबा के लिए निकलता कि राजा तो आपको होना था। देखें बाबा को अपने बुद्धि रूपी नेत्र से कि बाबा का वो लौकिक जीवन भी कैसा था। लगभग 60 वर्ष की आयु तक आते आते शिव बाबा का अवतरण और एक दिव्य लक्ष्य कि अब तुमको ही नारायण बनना है। साक्षात्कार होते ही कि इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नई दुनिया की स्थापना मेरे द्वारा होनी है, सब कुछ स्वाहा समर्पण, इतना निश्चय। हम भी साकार जीवन में हैं, हमें भी वो सारा ज्ञान प्राप्त हुआ, हम भी दिव्य बुद्धि से ये समझते हैं कि अब पुरानी दुनिया को जाना है, नई दुनिया आनी है और कल ही विनाश होना है। आने वाले कल में, वो कल तो कभी भी आ जाएगा, मेरा या संसार का, क्या ऐसी समर्पणता पुरुषार्थ के लिए, पढ़ाई के लिए ऐसी ललक जैसी बाबा की थी मेरे अंदर भी है। चेक करें, आप अपना डायरी और पेन निकाल लें, सबके पास डायरी पेन होगा ही, और डायरी पेन ले करके अब हम देखें कि बाबा में जैसे ही प्रथम साक्षात्कार हुआ, जो बाबा में एक सुंदर ललक जागृत हुई, एक निश्चय, संपूर्ण निश्चय कि जो परमात्मा कह रहे हैं वही सत्य है और अब वही मुझे करना है, क्या वही लगन, वही ललक मेरे अंदर है? क्योंकि मेरा भी लक्ष्य है साकार से अव्यक्त बनना, तो फॉलो करना होगा ना। ज्ञान उन्हें मिला और उन्होंने सब कुछ स्वाहा कर दिया। चलिए, हम परिवार में रहते हुए, संसार में रहते हुए, क्या आपने पुराने संस्कार, पुरानी बातों को समर्पित कर पाए? देखना है। नहीं तो क्यों? ऐसे में तो अव्यक्त बनने की जो मेरी यात्रा है, वो यात्रा बहुत लंबी हो जाएगी। और क्या ये वक्त मेरे पास है इतना कि मैं लंबी यात्रा करके संपूर्ण बनूं? मेरे पास संभव है 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, इसमें ही मुझे ये यात्रा पूर्ण करनी है। तो आज के इस सत्र में बाबा को सामने देखते हुए, जिन्हें मुझे फॉलो करना है, जिनके समान मुझे बनना है, जैसे आज बाबा कह रहे थे कि केवल बोलना नहीं है, करना है, भट्टी में इस बात को गहराई से हमें देखना है कि हम कितना वो कर रहे हैं। चेकिंग करते चलेंगे अब हम। बाबा जैसा बनना है तो पहले बाबा की दिनचर्या को फॉलो करना है। बाबा की का अमृत वेला कैसा रहा होगा? चलिए, अब बाबा को देखते हुए, हमारे योग का भी सत्र है, चेकिंग का भी सत्र है, परिवर्तन के लिए जो संकल्प आ रहे हैं उन्हें अपनी डायरी में हम नोट करते चलेंगे। आज मेरा अमृत वेला कैसा था? या मेरा अमृत वेला कैसा रहता है? जो हमारी दिनचर्या का फाउंडेशन है, जबकि परमात्म मिलन होता है, जबकि भगवान वरदानों से हमारी झोली भरते हैं, ये कहते हैं कि तुम जो चाहो वो मुझसे प्राप्त कर सकते हो अमृत वेले, उस अमृत वेले के समय को मैं कैसे बिताता हूं? बहुत ऑनेस्टली अपनी डायरी में अब नोट करते चले। आलस्य रहता है, सो जाता हूं, छोड़ देता हूं, चलता है ना, योग तो लगता नहीं है, नींद आती है, उसे उठने से क्या फायदा है, ये फीलिंग है? बाबा को देखो, बाबा को देखो, हमारे सभी पूर्वजों के अनुभव सुन लें। जब भी बाबा के रूम में जाते थे, चाहे वो 2:30 बजा है, 3 बजा है, 3:30 बजा है, बाबा जागती ज्योत बनके गहन तपस्या में बैठे होते थे कि बाबा बड़े बाबा से मिल रहे हैं, रूहरिहान कर रहे हैं, शक्ति भर रहे हैं। मेरा भी अमृत वेला ऐसा है। छोटी छोटी बातों से शुरुआत करें। बाप समान बनना एक बहुत ऊंचा लक्ष्य है, लेकिन इन बातों को जब यहां है, एक प्रेरणा लेकर, एक पाठ पढ़कर हमें यहां से जाना है। बाबा का जैसा अमृत वेला था, मुझे भी अपने अमृत वेले को वैसे शक्तिशाली करना है। नींद वाली नहीं, झुटके वाली नहीं, लेकिन पूरी भरपूरता और मिलन का अनुभव करने कराने वाली। अपने आप को मार्क्स दीजिए, कि अभी यदि मैं अपने अमृत वेले के 100 मार्क्स में से या 10 मार्क्स में से अपने आप को मार्क्स दूं तो मेरा अमृत वेला कैसा है? उत्तम, अति उत्तम, उत्तम, मध्यम या फिर कनिष्ठ? कि उठ के बैठ तो जाता हूं लेकिन योग नहीं लगता, और कनिष्ठ से भी कनिष्ठतम वो कि उठे और फिर सो गए। उठे ही नहीं, वो तो कनिष्ठतम ही हो गया ना, उनका तो नंबर ही नहीं है, काउंट ही नहीं करेंगे। हम ही चलना है जो बाबा कहते हैं ना, सतु सतु प्रधान तक, वैसे अति उत्तम तक। एक कशिश रहती है कि कब सुबह हो और हम उठ करके बाबा से मिलन मनाने के लिए बैठ जाएं, खींचे बाबा की याद। ये बाबा की अवस्था थे ना, हमें वहां तक पहुंचना है। मार्क्स दें अपने आप को, देखें, ये आपके लिए आईना है। अभी का सत्र योग भी, चेकिंग भी, आईना भी, और परिवर्तन का संकल्प भी। भट्टी में संकल्प लेकर जाना है, अब ये करना है। आगे चल, मुरली पहुंच जाए उन दिनों में जब बाबा हिस्ट्री हॉल में मुरली सुनाया करते थे। देखें बाबा की तन्मयता और बैठे हुए बच्चों की चात्रकता, मुरली के लिए कितना बाबा का सम्मान कि एक दिन भी बाबा ने मुरली सुनानी मिस नहीं की। अपने लास्ट डे में भी अव्यक्त होने से पूर्व बाबा ने मुरली सुनाई। जब भी कोई आता था बाहर से तो भी बाबा पूछते थे कि बच्चे आज की मुरली तुमने पढ़ी या सुनी? वो कहते थे कि नहीं बाबा आज नहीं सुनी, तो बाबा कहते थे जाओ पहले पढ़ के आओ फिर बाबा मिलेंगे। एक एक रत्न लाखों के हैं बाबा कहते थे, एक एक रत्न जीवन को बदलने वाले, एक एक रत्न पूरे कल्प के लिए समृद्ध संपन्न बनाने वाले। इतनी लगन चात्रकता मुरली के प्रति है, या ये कि ठीक है पढ़ लेंगे ना, सुन लेंगे ना, रोज तो वही बात है, आज नहीं गए तो क्या हुआ, आज काम ज्यादा है, भोजन तो नहीं छोड़ते, सोना तो नहीं छोड़ते। फिर मुरली जो हमारी आत्मा का भोजन है, मेरे जीवन को बदलने वाला है, उसके लिए ये संकल्प बाबा ने, हमारी आदर्श जिनके समान मुझे बनना है, एक दिन भी जिन्होंने इसे मिस नहीं की, मेरी मिस हो तो क्या मैं उनके समान बनूंगा? ना केवल मुरली सुनना लेकिन मुरली का चिंतन, बाबा का एक सुंदर महावाक्य भी और जीवन भी। केवल मुरली सुनना नहीं लेकिन उसका सुंदर चिंतन, एकांत में बैठकर उसका गहन चिंतन मैं करता हूं। चलिए आज की ही मुरली लें, हर एक अपनी डायरी में एक पॉइंट लिखें आज की मुरली से, कि आज की मुरली में कौन सी बात मुझे सबसे अच्छी लगे। लिखेंगे आज बाबा ने चार पेज की जो मुरली सुनाई, उस मुरली में से अनेक बातें थीं, अनेक रत्न थे शुरू से लेके अंत तक, कौन सी एक बात मैंने आज अपने लिए ली है, अपने चिंतन के लिए ली है कि मैं इस एक बात पर गहराई से चिंतन करूंगा, उसे अपने जीवन में लाऊंगा। देखें बाबा को, बाबा कहा करते थे गाय से सीखो, घास खाती है, एकांत में बैठकर जुगाली करती है। मैंने आज जुगाली की, और जुगाली नहीं की तो मैं कहां फॉलो फादर कर रहा हूं। अपनी दिनचर्या का अंग बनाए इसे। लिखें आज की मुरली की एक लाइन में वो पॉइंट लिखें जो आज दिल को सबसे अच्छी लगी। और हॉल में भी स्टूडेंट बन करके आए डायरी पेन लेकर, जो अच्छी बातें लग रही हैं नोट करते जाओ, क्योंकि अगली क्लास आएगी ये पिछली बातें भूल जाएंगे। नोट करके रखो, एकांत में बैठ के रिवाइज करो। लिखी सबने? किस किस ने लिखी, जरा हाथ उठाए। 5 सेंटेंस उस पर चिंतन, एकांत में चिंतन, इसलिए ताकि वो मेरा जीवन बने। क्योंकि बाबा कहते हैं जब तक गाय ने घास खा ली, यदि जुगाली नहीं करेगी तब तक खून नहीं बनेगा, हजम नहीं होगा, शक्ति नहीं मिलेगी। हमने भी मुरली सुन तो ली, लेकिन एक भी पॉइंट लेकर के उस पर मनन चिंतन नहीं किया, मंथन नहीं किया, जुगाली नहीं की, तो वो शक्ति बनेगी, बल बनेगा, मन मगन होगा। मनन करेंगे मन मगन होगा, और यदि ज्ञान का मनन नहीं करेंगे, ज्ञान का चिंतन नहीं करेंगे, तो क्या चिंतन चलेगा? व्यर्थ चिंतन, दुनियावी चिंतन, तेरे मेरे का चिंतन। अभी भी यहां आए भी हुए हैं तो भी कमरे में हो सकता है 5 हैं, 10 हैं, दूसरे का चिंतन कि ये बाथरूम में ज्यादा टाइम लगाता है, नहीं जल्दी निकलता नहीं है, घुस जाता है सबसे पहले है, और टाइम बेचना लगाता है, मुरली का टाइम हो रहा है, योग का। ठीक है, सबका अपना अपना टाइम होता है, थोड़ा एडजस्ट करें। घर में आप राजा हैं, रानी हैं, मालिक हैं, यहां जब बड़े परिवार में आते हैं थोड़ा एक दूसरे का हमें ध्यान भी रखना है। लेकिन मान लो वो ध्यान नहीं रख रहे हैं तो आप अपना चिंतन तो वेस्ट ना करें। एक शब्द में प्यार से बोल दिया लेकिन व्यर्थ नहीं, ज्ञान का चिंतन, तो मुरली का चिंतन, ये भी मेरे जीवन का सुंदर अंग बन जाए। कौन कौन ऐसे हैं जो रोज चिंतन करते हैं मुरली का, जरा हाथ उठाएंगे। बहुत अच्छा, शुक्रिया। जो नहीं करते यहां से नियम लेकर जाए, आधे पेज, एक पेज मुझे लिखना ही है। जब तक ऐसा नियम नहीं बनाएंगे, हर चीज का पीरियड होता है ना, गेम्स का भी पीरियड होता है, फिजिक्स का होगा, मैथ का होगा, उसमें वो पार्ट पढ़ाए जाते हैं। मैं भी अपने मनन चिंतन के लिए एक सेक्शन सारे दिन में फिक्स करके रखूं, आधे घंटे का हो, 15 मिनट का हो, एक घंटे का हो, यह भी मेरा एक पीरियड है चिंतन के लिए, इसे हम जरूर लें। चिंतन के अलावा एक दूसरा चिंतन, सोचना। जीवन में जो विभिन्न परिस्थितियां या बातें आती हैं उनके लिए मेरी सोच कैसी है, मैं क्या सोचता हूं उन परिस्थितियों में, बाबा होते तो क्या सोचते। एक सूत्र वाक्य लेकर के जाइएगा यहां से, सूत्र वाक्य, बाबा होते तो। बाबा ने अपनी अव्यक्त मुरली में कहा था, 2011 की मुरली है, और फिर कई बार उस बात को अलग अलग रूपों में कहा, हमेशा ब्रह्मा बाबा को अपने सामने रखते हुए चेक करो कि बाबा होते तो कैसे सोचते, बाबा होते तो कैसे बोलते, बाबा होते तो कैसे कर्म करते, कैसे रिएक्ट करते, इस सिचुएशन में बाबा का रिएक्शन क्या होता, बाबा की प्रतिक्रिया क्या होती, बाबा को सामने रखो, बाबा कैसे याद में बैठते, इन सब की प्रैक्टिस भी हम करेंगे। लेकिन विभिन्न सिचुएशन जो हमारे सामने आती है लाइफ में भी, उनके लिए हमारा चिंतन कैसा है। मान लीजिए कोई आपका अपमान करता है, कोई आपको गाली देता है, आपकी निंदा करता है, आपसे ईर्ष्या रखता है, अनावश्यक रूप से ही आपके लिए उल्टी सुल्टी बातें माहौल बनाता है, उस व्यक्ति के लिए आपका चिंतन, आपका एटीट्यूड कैसा होता है, कैसा होता है, सोचो। कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा है ना जो आपकी परीक्षा लेता रहता है, आपको परेशान करता रहता है, आपके रास्ते में गड्ढे खोदता रहता है, हा? आपको लगता है कि ये बंदा या ये बंदी ठीक हो जाए तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी, ये तो हमें परेशान ही करते रहते, हमारे ज्ञान योग में बाधक बनते रहते हैं, है ना? सबके जीवन में ऐसे बाबा होते तो क्या सोचते? एक सन्यासी बहुत बाबा को गाली दिया करते थे, हा? जब वो बीमार पड़े एक दिन गाली नहीं दे रहे थे, बाबा ने कहा देख के आओ कि वो आज पुष्प वर्षा क्यों नहीं हो रही है। एक भाई गए, देखा बीमार थे वो, आए कहा बाबा वो बीमार हैं। बाबा ने एक टोकरा फल दिया, कहा कि जाओ देख के आओ, उसको बच्चे को देख के आओ। बोले बाबा हम नहीं जाएंगे, वो तो रोज आपको गाली देते हैं, उनको आप फल क्यों भेज रहे हैं? बाबा ने कहा नहीं नहीं जाओ देख के आओ। फल देने के लिए गए, दिया, कहा बाबा ने भेजा है परिवर्तित, कि मैं रोज जिन्हें ऐसे अपशब्द कहता हूं उन्होंने ऐसे समय पे मेरे लिए फल भेजा, और कोई तो पूछने वाला है नहीं, बाबा ने मेरे लिए फल भेजा। वो अखबार जो बाबा के लिए बहुत उल्टे से उल्टे बातें लिखा करते थे, लोगों ने कहा कि इन पे मान हानि का दावा करते हैं, बाबा ने कहा नहीं, बाप कभी मान हानि का दावा थोड़ी करता है बच्चों पे। बाद में उन्होंने खुद स्वीकार किया, आपने उसी अखबार में ये लिखा कि नहीं हमने गलत लिखा था, बाबा तो बहुत महान है। सोच तो व्यक्ति की सोच को अपनी सोच से, अपने एटीट्यूड से, अपनी शुभ भावना से बाबा ने बदला। हम भी बदलते हैं या फिर बोलना बंद कर देते हैं, किनारे हो जाते हैं, उनके लिए मन में हमारे बुरे भाव आने लगते हैं। यदि ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है, अपनी जगह बाबा को खड़े करके देखें, बाबा होते तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते? बच्चे बात नहीं मानते हैं, गलत राह पे चल रहे हैं, बाबा होते तो कैसे हैंडल करते? सोच के देखो, परिवार में लोग ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, बाबा होते तो क्या करते? चलो बाबा को सामने रखो और विभिन्न सिचुएशंस में बाबा की प्रतिक्रिया क्या होती उसे तो सोते जागते उठते बैठते हमें जिनके समान बनना है उन परिस्थितियों में, उन बातों में, उस दिनचर्या में बाबा को सामने रख करके अपने अंदर परिवर्तन लाना, ये एक सहज योग का तरीका है। एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं कि यदि बाबा यहां होते इस स्थान पर तो क्या करते। इसीलिए मैंने बाबा की पूरी लाइफ आप लोगों के सामने रखी। हम सब ज्ञान की दृष्टि से, समझ की दृष्टि से, जो हमने अध्ययन किया है, सुना है, जो सुनते हैं रोज, उस आधार पे बाबा को अपने मन की आंखों से देख सकते हैं ना, अनुभव कर सकते हैं ना कि बाबा यदि ऐसे होते यहां तो क्या करते। इसे लाएं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में तो आपका जीवन बदलता जाएगा, सोच बदलती जाएगी, चिंतन बदलता जाएगा। इसे प्रैक्टिकल अप्लाई करके देखें तो एक परिवर्तन की ओर, साकार से अव्यक्त की ओर हमारी यात्रा द्रुत गति से, तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। अन्यथा परिवर्तन या गति स्लो होगी। पहुंचना तो हम सबको है, लेकिन कोई पहले पहुंच जाता है और कोई बाद में, और रेस में जो पहले पहुंचता है वो विनर होता है। सबकी नजर विनर पे ही होती है ना, हाँ फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, जो दसवें नंबर पे रहता है उसको पहुंचता तो वो भी है, लेकिन वैल्यू नहीं रहती। तो पद उस अनुसार ही फिर कम भी तो हो जाएगा ना। तो चिंतन, उसकी बात आए कर्मयोगी जीवन पे। बाबा का हर कार्य कैसे योग युक्त था, अब सारे दिन की बात यदि हम ले रहे हैं तो बाबा के कर्म भी योग युक्त। हम हर कर्म करते हैं, बाबा हर कार्य किया करते थे, चाहे वो अनाज साफ करने की बात हो, सब्जी काटने की बात हो, या आप देख रहे हैं कुछ कारपेंट्री का वर्क बाबा कर रहे हैं, हर कार्य, ऐसा नहीं कि कोई कार्य छोटा है, हर कार्य, और कराया भी उन्होंने, मोची का भी काम कराया, बर्तन भी धुलवाए, सड़क भी साफ करवाए, सब कुछ। लेकिन ये सब करते हुए क्या एक की याद रह सकती है, कैसे रह सकती है, वो कला बाबा ने हम सबको सिखाई। हम कर्म करते हुए कितना स्मृति स्वरूप रहते हैं, अपने हर कर्म में कैसे याद को शामिल कर लें, ये कला इस भट्टी से सीख कर जाइएगा। और यही आपको अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए, आपकी अव्यक्त यात्रा के लिए, संपूर्णता की यात्रा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप इस कला को कितना सीखते हैं जो बाबा ने अपने जीवन में अपनाई थी, हर लौकिक चीज को अलौकिक में परिवर्तित करना। भले बाबा गार्डन में काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पत्र लेखन कर रहे हैं, लेकिन वहां भी कैसे स्मृति में डूबे हुए। यदि हम गार्डन में कार्य कर रहे हैं, क्या स्मृति हो सकती है, पत्र लिख रहे हैं, किसी को आवश्यक मैसेज कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, क्या सुंदर स्मृति हो सकती है। बाबा को देखिए, ऐसा नहीं कि बाबा खेलते नहीं थे, हमारा ज्ञान तो रमणीक ज्ञान है ना, रमणीकता भी है तो गंभीरता भी है, तो खेल पाल करते हुए भी, चाहे वो बैडमिंटन खेलें, चाहे रस्सी कूदें, चाहे बच्चों को पहाड़ी पे लेकर जाएं, बाबा स्मृति दिलाते थे कि बच्चे किसके साथ खेल रहे हो, ये सिंगल नहीं है, यहां डबल इंजन लगा हुआ है। तो बाबा कैसे शिव बाबा की स्मृति दिलाया करते थे, कर्म करते हुए भी कि किसके साथ हो। हम कितना याद में ऐसे रह के दूसरों को याद दिलाते हैं, शिव बाबा याद है, या मुझे देखकर कर्म करते हुए किसी और को ऐसा लगता है कि ये कितना डूब कर बाबा की याद में मग्न होकर कार्य कर रहा है। एक होता है याद दिलाना वाणी से, और दूसरा है अपने कर्म से सिखाना। बाबा ने अपने कर्म से सिखाया कर्म योगी बनना, याद दिलाते भी थे तो साथ ही अपने कर्मों से ये स्मृति दिलाते थे, हमें बाबा के जैसा बनना है तो हमें भी ये फॉलो करना होगा। भोजन करते हुए बाबा को देखा ना, भोजन करते हुए बाबा की फोटोज, और हमेशा बाबा कहते भी हैं कि भोजन करते हुए ऐसे डूब के करो, एक एक गिट्टी जैसे बाबा की याद में जाए। बाबा को इतना अटेंशन रहता था, तभी तो वो नंबर वन बन गया ना, बाबा की एक एक शिक्षा को अपने जीवन में लाने में नंबर वन। हम भोजन कैसे करते हैं, चेक करो। हम जब खेल पाल के लिए जाते हैं पिकनिक के लिए, चेक करो वहां कितनी याद रहती है। कर्म करते हैं तो कितने कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं और कितने उसमें स्मृति रहती है। भले ही आज परसेंटेज है, भट्टी में हम आए क्यों हैं, भट्टी में आए ही इसलिए हैं ताकि अपने आप को देख सकें कि मेरी स्थिति कहां तक है। आईना है भट्टे, ये दिखाने के लिए कि देखो बाबा ने क्या किया, कैसे वो अव्यक्त स्थिति प्राप्त कर पाए, और वही तुम्हारा भी लक्ष्य है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, कर्म तुम भी करते हो, कैसे कर रहे हो। बाबा ने भी वही किया, कुछ अलग नहीं किया, लेकिन उन कर्मों में कैसे उन्होंने सुंदर और श्रेष्ठ स्मृतियों को जोड़ा, ये इंपॉर्टेंट था। हर लौकिक चीज को अलौकिक में बदलना, ये बात हम यहां से बहुत पक्का करके जाएं। कैसे हर चीज में शिव बाबा की याद को शामिल कर दिया जाए,
कोई स्वमान ऐड कर दिया जाए, कोई अभ्यास ऐड कर दिया जाए, कोई ज्ञान की बात ऐड कर दी जाए। बाबा ये किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, बाबा कछुए को दिखा के कहते थे, देखो बच्चे कछुआ है ना, कछुआ क्या करता है, जब तक कर्म करना है कर्म किया, फिर अपने आप को समेट लेता है। गाय को दिखाते थे, देखो गाय कैसे खाती है, जुगाली करती है। एरोप्लेन को दिखाते थे, देखो कैसे एरोप्लेन उड़ रही है, वैसी तुम्हारी भी एक ऊंची उड़ती हुई अवस्था होनी चाहिए। झाड़ को दिखाते थे, कहते थे देखो झाड़, इस झाड़ को देख करके तुम्हें क्या याद आए, तुम्हारा कल्प वृक्ष। अब ऐसे ही क्या हर स्थूल चीज को देख के तुरंत उसे हम ज्ञान के रूप में परिवर्तित करते हैं? योग की दृष्टि से उसे देखते हैं या उसमें कुछ अभ्यास ऐड करते हैं? करते हैं। मान लीजिए यहां इस हॉल में आपको जो चीजें दिखाई दे रही हैं, उसे ज्ञान की दृष्टि से उसे क्या उठाएंगे या उससे क्या उसका गुण लेंगे या कैसे उसे ज्ञान और योग की दृष्टि से देखेंगे, कैसे लौकिक से अलौकिक में परिवर्तित करेंगे? करते ना हो तो अब यहां से करते हुए जाना है। मान लीजिए हम घड़ी देखते हैं, घड़ी देखते ही हमारी स्मृति क्या होनी चाहिए? सृष्टि चक्र और अब घर जाना है, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। ज्ञान तो हम सबके पास बहुत सुंदर है, भरपूर, हम इसे यूज कितना करते हैं? यूज कितना करते हैं? सचमुच वो चीज याद आती है? अच्छा, ये सोफा है, सोफे को देख के क्या याद आ रहा है? सीट पर सेट रहो, ओके, और स्वमान की सीट पर सेट रहो, सत्युगी सिंहासन याद आ रहा है, ठीक है, बाप दादा का दिल तख्त, सत्युगी सिंहासन, सीट पर सेट, और अकाल तख्त नशीन। बहुत सुंदर, आप लोग नोट भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चिंतन वाली बातें आ रही हैं। ऐसे जस्ट लौकिक को अलौकिक में हमें परिवर्तित करना है, राइट? ओके, अच्छा, इसके अलावा जो चीजें हम देख रहे हैं, लाइट है, लाइट देख करके पवित्रता की लाइट, सर्च लाइट, हमें सर्च लाइट देनी है, हा? अच्छा, चेक भी करना है फिर कि सर्च लाइट देता हूं या नहीं देता हूं। अच्छा, लाइट हाउस, बाबा लाइट है, जागती ज्योत। अच्छा, इधर से पांडव ही बहुत अच्छा, ज्ञान गंगा है, जागती ज्योत, लाइट का ताज। लाइट को देख करके क्या याद करें, कैसे इसे लौकिक से अलौकिक में परिवर्तित करें? अज्ञानता के अंधेरे से प्रकाश की ओर चलना है, लाइट हाउस बनकर रास्ता बताना है, ओके, नोट करें। अंधों की लाठी बनना है, लाठी तो मैंने बोला नहीं, मैंने लाइट इधर लाठी है नहीं, हाँ जी, नॉलेज इज लाइट, ओके, शिव बाबा, ओके, लाइट रहना है, वेरी गुड, डबल लाइट रहना है, ओके, पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही लेकिन आप लोग भी नोट करना और चिंतन करते चलना, ओके, अच्छा, माइक, माइक बनना है, हल्का बनना है, लेकिन ये तो माइक है, लाइट हो गया, अब माइक माइक पे आओ, बाबा का संदेश सबको देना है, ज्ञान का स्वरूप बनकर माइक बनना है, देना है दूसरों को, और माइक बनना है और दूसरों को बनाना है, हाँ जी, और हाँ, लेकिन ये माइक से कैसे जुड़ा? वो तो करना ही है, माया का सामना माइक को देखकर है। ठीक है, ज्ञान सुनना सुनाना है, माइक बनना बनाना है, बाबा कहते हैं माइक क्वालिटी निकालो। ओके, ठीक है, स्टेज, ऊंची स्टेज बनानी है, वर्ल्ड ड्रामा। हर घड़ी हम स्टेज पर हैं, बहुत सुंदर। और दिल तक नहीं, स्टेज स्टेज, जो कर्म हम करेंगे वो हमें भी देखकर दूसरे करेंगे। ठीक है, थोड़ा तेज आवाज से बोले। ओके, ऊंची स्टेज पर आवे। और स्टेज पर हीरो पार्ट प्ले करना है। ओके, और अव्यक्त स्थिति, बहुत सुंदर। और बहुत अच्छा, अच्छा मास्क, साइलेंस, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। हाँ, और सोच के समझ के बोलो। और अपना असली चेहरा मत दिखाओ है। ये क्या बात हुई? हमारा तो एक ही असली ही चेहरा है। अच्छा, जैसे बाबा गुप्त हैं वैसे हमें भी गुप्त रहना है, ये बात ठीक है। अंदर बाहर एक, अच्छा, लेकिन मास्क से इसका का क्या कनेक्शन? अंतर्मुखता। ओके, और सेफ रहना है, दूसरों को भी सेफ रखना है। ठीक है, तो हर बात ये है, हर लौकिक चीज को अलौकिक में हमें परिवर्तित करना है। जो भी चीज दिखे आज ये होमवर्क कीजिएगा, एक दूसरे से शेयर भी कीजिएगा, भले विस्परिंग वॉइस में ही करें। हमने इस चीज से हम क्या गुण ले सकते हैं, इस चीज से हम कैसे इसे हम अलौकिक में परिवर्तित कर सकते हैं, तो क्या होगा कि हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे बल्कि कर्म योगी हो जाएंगे, जो बाबा ने हमें सिखाया। भोजन बनाते हुए, भोजन खाते हुए, सब्जी काटते हुए, चलते हुए, रूम में भी हम हैं, हम कैसे इन चीजों को चेंज कर सकते हैं, कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। पर्दे से हम क्या सीखते हैं? पर्दा, पर्दा है ना आपके कमरे में खिड़कियों पे, प्रत्यक्षता का पर्दा उठने वाला है, मर्यादा, अच्छा मर्यादा का पर्दा, अच्छा हाँ, किसी में बुराई है तो पर्दा डाल दो, ठीक है, लेकिन उसको प्यार से शुभ भावना और सीख भी दो, है ना, ठीक है। और पर चिंतन नहीं करना है, ठीक है। दरवाजा, दरवाजा, माया का दरवाजा बंद करो और स्वर्ग का गेट खोलो, बहुत सुंदर। ठीक है, तो आज का होमवर्क, बाबा से बाबा के समान बनने के लिए हम हर चीज को लौकिक को अलौकिक में परिवर्तित करेंगे। ठीक है जी, जी जी, बहुत सुंदर, आगे चले। बाबा के एक एक कर्मों में जुड़े हुए, जो योग से जुड़े हुए हैं, बैठना, अब हम योग की ओर चलते हैं। बाबा का बैठना देखें, बाबा को, बाबा का बैठना इस स्मृति के साथ कि जैसे मैं राज ऋषि हूं, जब भी बैठे हमारी बैठक भी हमारी किसी न किसी सुंदर स्मृति के साथ जुड़ी हुई हो। अब उस बैठने में अलग अलग चीजें शामिल कर सकते हैं। जब मैं बैठूं तो चाहे मैं भृकुटी तख्त पर बैठा हुआ हूं, चाहे मैं परमधाम में बैठा हुआ हूं, चाहे मैं किसी भी स्वमान की सीट पर बैठा हुआ अपने लिए सीट सेट करें, या फिर मैं बाबा की गोद में बैठा हुआ हूं, बैठूंगा तो ऐसी सुंदर और श्रेष्ठ स्मृति में बैठूंगा, मेरा एक कर्म योग बहुत सहज हो जाएगा, सहज होगा फिर कर्म योगी बन जाना। लेकिन बैठक के साथ स्मृति जरूर छोड़ें, क्योंकि बैठना हमारा ज्यादा होता है, पक्का कर लें। दो तीन सिंहासन आप यहां से गिफ्ट के रूप में ले जाएं। पहला, यदि मैं बैठूंगा भृकुटी तख्त पर, भृकुटी अकाल तख्त पर, इस सिंहासन पर बैठूंगा। दूसरा, हम बैठ सकते हैं परम धाम में, बाबा के पास उनकी छत्र छाया में। और तीसरी बैठक ले लें, जैसे मैं बाप दादा की गोद में बैठा हुआ हूं। ये तीन सिंहासन, वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं स्वमान के, लेकिन ये तीन सिंहासन खास अपने लिए आज जब भी बैठेंगे तो इसकी सुंदर प्रैक्टिस कर्मयोगी बनने के लिए जरूर कीजिएगा। बाबा का खड़े होना, चलिए थोड़ी देर खड़े हो जाएं सभी अपने स्थानों पर। देखें बाबा जैसे खड़े हैं, बाबा को देखते हुए हाथ पीछे करके, बाबा का हाथ पीछे करके खड़े होना। बाबा कहते थे अपने आप को गुप्त रखना। करण करावनहार बाबा हैं, मैं तो केवल निमित्त हूं, कराने वाला ऊपर से करा रहा है, ये बाबा की बहुत गहरी और डीप धारणा। हम भी थोड़ा मोड़ा कुछ करके उसे वाचा में ना ले आए कि ये कार्य मैंने किया, ये सेवा मैंने की, नहीं, मैं तो जस्ट इंस्ट्रूमेंट हूं, बाबा करा रहे हैं। हाथ सामने करना, सामने करें बाबा की तरह, भाव आज्ञाकारिता, बाबा जो कहें, बाबा जो आज्ञा दें, बाबा की हर आज्ञा सिर माथे पर, शिव बाबा की। बाबा ने कहा किया, कहा किया, मैं आज्ञाकारी बच्चा हूं। तो बाबा का एक एक महावाक्य मुझे अपने जीवन में उतारते चलना है। बाबा अपनी उंगली ऊपर करते थे, किसकी ओर इशारा करते थे, ऊपर करें अपनी उंगली, इशारा किधर, एक की ओर, एक ऊपर की ओर, कि उसे देखो, वो है हम सबका पालनहार तारनहार। बाबा की कई बैठक ऐसे सिर पे हाथ रख के होती थी। वो किस बात की ओर इंगित करता है, निश्चिंतता, निश्चिंत बेफिक्र बादशाह। हम भी उनकी तरह बेफिक्र बादशाह बने। बाबा की दृष्टि कितनी रूहानी, कितनी शक्तिशाली, बाबा से दृष्टि लें। हमारी भी दृष्टि बाबा की तरह सबकी रूह को देखने वाली हो, रूहानी हो। बाबा से दृष्टि लेकर पूरे हॉल में दृष्टि डालें, सबको आत्मिक दृष्टि से देखें, घूमते हुए पूरे हॉल में जो जो हैं धीरे धीरे देखें, सबके मस्तक पर चमकती हुई आत्मा मणि, चमकती हुई ज्योति।
जैसे बाबा सबके मस्तक पर चमकती हुई आत्मा को देखते थे, इस हॉल में भी चारों तरफ चमकती हुई मणियां। बाबा ने कभी किसी के देह को नहीं देखा, आत्मा को देखा। पक्का कर ले, मैं भी अब जिसे भी देखूं, जिससे भी बात करूं, आत्मा को ही देखूंगा, रूहानी दृष्टि से ही व्यवहार में आऊंगा। एक एक पेयर बना लें, भाई भाइयों के साथ, बहने बहनों के साथ पेयर बना लें, आमने सामने खड़े हो जाएं और आत्मिक दृष्टि की सुंदर लेन देन करें। पक्का करें इस आत्मिक दृष्टि को, मैं आत्मा भृकुटी तख्त पर विराजमान सामने अपने आत्मा भाई को देख रहा हूं। जैसे बाबा से करंट लेकर मैं अपने आत्मा भाई को दे रहा हूं, बाबा होते तो कैसे दृष्टि देते सामने वाले को, किस स्मृति से दृष्टि देते। मैं भी मास्टर ब्रह्मा हूं, बाप समान हूं, उसी स्मृति में सामने वाली आत्मा को भृकुटी तख्त पर देखते हुए शक्तिशाली दृष्टि। देह दिखाई ना दे, केवल मस्तक पर चमकती हुई मणि ही दिखे। मैं भी भृकुटी तख्त पर विराजमान और मेरे सामने मेरा आत्मा भाई। संकल्प ले लें, मुझे ऐसे ही सबको अब अकाल तख्त पर बैठकर अकाल आत्मा को ही देखना है। उसी से व्यवहार में आना है, बाबा की तरह। अब बाबा होते तो सामने वाले को क्या बोलते, क्या वरदान देते, क्या स्वमान देते। अब अपने सामने वाले साथी के नजदीक जाकर मास्टर ब्रह्मा बनकर एक वरदान दें, एक दूसरे को वरदान देंगे। मास्टर ब्रह्मा बनकर बाबा होते तो क्या वरदान देते, नजदीक जाएं, एक वरदान दें, उमंग उत्साह बढ़ाएं, शक्ति भरें। बाबा के बोल कैसे होते, क्या वरदान देते। मास्टर ब्रह्मा बनकर वरदान दें, दृष्टि दें। अपनी शुभ भावना के बोल कि आप बहुत आगे बढ़ो, बहुत उन्नति करो। अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करो। बैठेंगे अब अपने स्थानों पर और बैठेंगे बाबा की तरह, याद की स्थिति में मग्न। देखें बाबा को, ऐसे एक बाबा की याद में डूब कर, समा कर, एक ही संकल्प रखते हुए कि बाबा जो लक्ष्य आपने हमें इस ज्ञान के बचपन से दिया, हम अब आपके समान बनकर रहेंगे। हर घड़ी, हर पल, सुबह से लेकर रात तक आपको अपने सम्मुख रखते हुए, आपको फॉलो करते हुए, हम आपके समान बनकर सारे संसार में आपको प्रत्यक्ष करेंगे। करेंगे ना, कौन कौन करेगा, जरा हाथ उठाएं। सुंदर, ये हमारी भट्टी की एक सुंदर छाप, एक सूत्र वाक्य, बाबा होते तो बाबा मेरे सामने रहें, और बाबा होते तो इस कार्य को कैसे करते, इस बोल को कैसे बोलते, इस स्थिति में क्या सोचते, कैसे दिनचर्या रखते, कैसे व्यवहार करते, इन सब बातों में बाबा को सामने रखते हुए करते चलें, आप देखेंगे स्थिति ऊंच से ऊंच बनती चलेगी। तो चलें बाबा की तरह निरंतर याद के स्थिति में, अपलक, जैसे मैं एक बाबा को निहारता रहूं, तुमको ही देखता रहूं, तुम्हारी याद में ही समाया रहूं, इस याद की स्थिति में बैठेंगे।